एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं,
मैं तुझ जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा।
मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। हथेली में चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा।
अपनी हथेली में चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा।
अपनी आँखों की पुतली समा रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे, लज्जित नहीं।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूं। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं, जब हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं हमारे मनों को खोल दे और तेरा आत्मिक आशीष दे। पिता परमेश्वर मेरे श्रोताओं के संग हो, विशेष रूप से उन्हें मदद कर तेरे वचनों को सुनकर बहुत आय से आशीष पावे और मेरे संग हो। पिता तेरा पवित्र आत्मा दे कि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुना ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है साझेपन की भावना के माध्यम से प्रगति का राज। लेरी जब मीकोमेरी के घर में रोचक बातचीत, जापानी चाय और चावल के बने क्रैकर का आनंद ले रहा था, तब अन्य मेहमानों ने अपनी बाइबल को निकालना शुरू कर दिया था। उन सभी ने उसे आशा भरी नजरों से देखा। क्या आप कृपा हमें हमारा अध्ययन दे सकते हैं, मी कॉमरी ने पूछा। लेरी का पूरा ध्यान अपनी चाय पर था। उसने सोच रखा था कि यह मिलन समारोह मजाक करने भर के लिए था और अब वह कोई भी बात नहीं सोच पा रहा था। लेरी ने वास्तव में जापान में मसीह अंग्रेजी भाषा स्कूल की कई बाइबल कक्षाओं में पढ़ाया था जहां उसने काम किया था, लेकिन वे सभी पूरी तरह से योजनाबद्ध थे। वह बड़ी सहजता से बाइबल पर जानकारी दे सकता था, लेकिन स्वतः केवल परमेश्वर के विषय में बात करना अलग था। लेरी ने बचपन से बाइबल की सभी कहानियां सुन रखी थी, लेकिन वे उसके लिए व्यक्तिगत आधार पर कम महत्वपूर्ण थी। परमेश्वर की दृष्टि में जो कुछ गलत था उसे जानते हुए वह वही काम कर रहा था। वह परमेश्वर के विषय में कैसे दूसरों से बात कर सकता है जिन्हें वह वास्तव में जानता नहीं था। आसान्वित लोगों से घिरा वह अब सोफे पर बैठ गया। उसकी सब पहेली ध्वस्त होने वाली थी। भय के उस पल में उसके मस्तिष्क में उस पवित्र आत्मा से संबंधित वह आयत कौन थी जिसने हमें यह कहने के लिए सब दिए कि जब हम लोगों के सामने साक्ष्य देने के लिए लाए जाएं तो उन्हें कहें, लूका 12:12। उसने मदद के लिए एक व्यग्र प्रार्थना उच्चारित की और सबसे परिचित कहानी का ध्यान दिया जिसे वह सोच रहा था, उड़ा पुत्र। जैसा कि उसने वर्णन किया कि परमेश्वर कैसे उनसे भी प्यार करते हैं जो उससे दूर भटके हुए हैं, लैरी ने खुद को अपने दिल से सीधे बात करते पाया। उसके शब्द घुट रहे थे। लैरी को अपने जीवन में पहली बार समझ में आया कि परमेश्वर उससे कितना प्यार करते हैं। उस रात लैरी ने अपने बिस्तर से घुटने टिका, फिर अपने जीवन को ऐसे परमेश्वर के लिए प्रतिबद्ध कर दिया जो अंततः सत्य था। परमेश्वर के प्रेम के साझाकरण ने इसे मात्र एक परिचित अमूर्तता से कहीं अधिक बना दिया। अब यह ऐसा तथ्य था जिसने उसे अभिभूत कर दिया। यीशु ने उन्नति करने के लिए हमें प्रचार प्रसार की चुनौती दी है। शिष्यों ने मसीह के शब्दों और कार्यों और अंतत उनकी मृत्यु और भरोसे को आत्मसात करने में 3.5 साल बिताए थे। जैसे ही यीशु स्वर्ग लौटने वाले थे, उन्होंने उन शिष्यों को अपने निजी प्रतिनिधियों के रूप में नियुक्त किया। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आती है तो आप शक्ति प्राप्त करेंगे और पृथ्वी के सिरों तक आप मेरे साक्षी बनेंगे। प्रेरितों के काम 1:8 में हम यह यीशु का प्रतिज्ञा अपने शिष्यों के लिए पाते हैं। जब मसीह के अनुयायियों ने पेंटिकॉस्ट पर अपने दिल को निष्कपट भाव से समर्पित किया तो प्रकट होकर मसीह ने आत्मा की शक्ति के माध्यम से उनके जीवन को बदल दिया। वे न केवल यीशु मसीह के शारीरिक पुनरुत्थान और आरोहण के गवाह बन गए बल्कि उनकी उस पुनरुत्थान शक्ति के लिए भी जिसने उनके जीवन को बदल दिया था। मसीहों के रूप में हम भी यीशु के पुनरुत्थान के गवाह हैं क्योंकि हमने अपने जीवन में उनकी नवीनीकरण शक्ति का अनुभव किया है। आइए हम पढ़ते हैं इफिसियों 2:4-7। कहता है, लेकिन हमारे लिए अपने महान प्रेम के कारण उस परमेश्वर जो दया में समृद्ध हैं ने मसीह के साथ हमें जीवित किया जब भी हम आदेश के उल्लंघन से मृत हुए। यह उनकी कृपा थी जिससे आपको बचा लिया गया है और परमेश्वर ने मसीह के साथ हमें उठाया। उस आदेश के क्रम में वह मसीह यीशु में हमारे प्रति अपनी अतुलनीय दयालु संपन्नता के माध्यम से व्यक्त होकर अपने को दिखा सकता है। हमें मसीह के साथ जीवित कर दिया है, इसलिए हम उसकी कृपा की अतुलनीय संपदा को दिखा सकते हैं और वह हमें दुनिया भर में मानव जीवन में क्या कर सकता है इस विषय में शुभ संदेश लेने के लिए कहता है। फिर वह हमारे संग वैसे चलने का भरोसा देता है जैसा हम करते हैं, मत्ती 28:19-20। एक बार गवाह बने वॉइस ऑफ प्रोफेसी रेडियो मंत्रालय के संस्थापक HMS रिचर्ड्स ने कहा, मैंने उन लोगों के दिल में परिवर्तन देखा है जिन्होंने मसीह के सुसमाचार को सुना है। मैंने उन जगहों में यात्रा की है जहां परमेश्वर और मसीह का नाम तब कभी नहीं जाना गया था जब तक कि उनके गिरजाघर ने सुसमाचार नहीं ग्रहण किया। मैंने देखा है कि ये लोग बुरी आत्माओं के निरंतर डर से मसीह जीवन में खुशी के लिए गंदगी से स्वच्छता तक, रोग से स्वस्थ बनने तक बदलते गए हैं। मैंने नारीत्व की स्थिति में बदलाव देखा है। मैंने सच्चे मसीह घरों को मूर्ति पूजन के अंधेरे से उबारा है। मैंने जिस भी जगह का भ्रमण किया है उसमें मैंने जीवन को बदलते देखा है। मुझे पता है कि मसीह का सुसमाचार उद्धार तक के लिए परमेश्वर की वह शक्ति है, जैसा कि हम पढ़ते हैं 1:16 में, मुझे पता है कि जब चर्च सुसमाचार संदेश को घोषित करता है तो मनुष्यों के दिल और मानव घरों में परिवर्तन होते हैं और वे उन लोगों के जीवन में दिखाई देते हैं जो इसकी अपील की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। परमेश्वर ने हमें इस रोमांचक कार्य को करने के लिए दुर्बल इंसानों को एक विशेष भूमिका दी है, क्योंकि संदेश साझा करना हमारे विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे विश्वास को स्वस्थ रखने के क्रम में इसे व्यक्त किया जाना चाहिए। जैसे लेरी ने इतने नाटकीय रूप से तलाश की, हमारे विश्वास को साझा करने से हम इसे और अधिक पूरी तरह अनुभव कर सकते हैं और यह हमारे विकास का कारण बनता है। हम जैसे रहते हैं हम वैसे ही मसीह को साझा करते हैं। एक युवक जो एक अपमानजनक माहौल में पला बढ़ा, उसने एक बार देखा, मैंने अपने माता पिता को देखा जिन्होंने अपने उदाहरण से मुझे परमेश्वर की एक विकृत छवि दे दी। मेरे पास कभी रंग रूप से प्यार करने वाले किसी व्यक्ति का दृष्टांत नहीं था जिसने मुझे प्रेम किया। हमारे आसपास के लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति की बेहतर आशा आवश्यकता है जो उन्हें परमेश्वर की तस्वीर दे सके। उन्हें त्वचा वाले ऐसे किसी की जरूरत है जो ईश्वरीय गुणों का प्रदर्शन कर सके। हमारा सबसे शक्तिशाली उपदेश है हमारा सरल जीवन। इससे पहले कि आप किसी का ख्याल रखें, उन्हें भी पता हो कि वे आपका कितना ख्याल रखते हैं। पत्रस हमसे आग्रह करता है गैर मसीहों के बीच इतना अच्छा जीवन जिए कि वे आपके अच्छे काम देख सके और परमेश्वर की महिमा का गान करें, क्योंकि मसीह ने आपके लिए पीड़ा सही यह उदाहरण देते हुए कि आपको उनके पदचिन्हों का अनुगमन करना चाहिए। पहला पत्रस 2:12-21। क्योंकि कलवरी में हमारे लिए मसीह को कष्ट उठाना पड़ा, हमारे पास बलिदान के बहुत सटीक उदाहरण है। वैसा प्रेम हमें दूसरों से प्रेमपूर्ण कृतियों के रूप में पुनरुत्पादित होकर अविश्वासियों को मसीह की बाहों में लाने को एक शक्तिशाली शक्ति बन सकता है। हम मसीह का प्रचार करते हैं क्योंकि हम उसी तरह का चिंतन करते हैं। जब शैतान ने जंगल में यीशु को भूख की अपील, गर्व और उपधारणा के साथ हमला किया, यीशु ने पवित्र शास्त्र से उदाहरण देते हुए सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी। हम पाते हैं मत्ती 4:4-7-10 में यीशु मसीह तैयार थे क्योंकि उन्होंने बाइबल की सच्चाई के साथ अपना मन भर लिया था। यही वह जगह है जहां युद्ध हमारे दिमाग में जीत या हारा गया है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने मन में जो सोचता है वही है, कहता है नीति वचन 23:7। उभरते मसीह स्वर्ग की दिशा में सोचते हैं, वे उन स्वस्थ गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा प्रभु में आनंद लें, सब कुछ में प्रार्थना और याचिका के द्वारा धन्यवाद देते हुए परमेश्वर से अपने अनुरोध प्रस्तुत किया करें और परमेश्वर की वह शांति जो सभी समझ से परे हैं आपके दिल और यीशु मसीह में आपके दिमाग की रक्षा करेगी। आखिरकार भाइयों, जो भी सत्य है और जो भी महान है और जो भी ठीक है और जो कुछ भी शुद्ध है, जो कुछ भी प्रियकर है, जो भी प्रशंसनीय है, यदि कुछ भी उत्कृष्ट है या गुणगान की जाने वाली वस्तु है, ऐसी चीजों के बारे में सोचे और शांति का दूत तुम्हारे साथ रहेगा। हम इसे पढ़ते हैं फिलिपियों 4:4-9 में, जो हम अपने दिमाग में बैठाते हैं वही अंतर बनाता है, कचरा अंदर कचरा बाहर। परमेश्वर का वचन में परमेश्वर का जीवन है। हम जिस तरह देखते हैं हम मसीह को वैसे ही साझा करते हैं। मसीह के प्रतिनिधि के रूप में मसीह सभी तरह के चरम सीमाओं को झेलते हुए भी जैसा देखते हैं इस विषय में भी शालीन होगा। हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 3:1-5 में, यदि उनमें से कोई भी इस शब्द पर विश्वास नहीं करता है तो वे जीत सकते हैं जब वे आपके जीवन की शुद्धता और सम्मान को देखते हैं। आपकी सुंदरता बाहरी सजावट से नहीं आनी चाहिए, जैसे कि सजे संवारे बाल और सोने के गहने और अच्छे कपड़े पहनना। इसके बजाय यह आपके भीतर की आत्मवत्ता, एक विनम्र और शांत हृदय की अनौपचारिक सुंदरता होनी चाहिए, जो कि ईश्वर की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से यही रास्ता है। वे जिन्होंने परमेश्वर में अपनी आशा रखी, वे खुद को सुंदर बनाया करते थे। पहला पत्रस 3:1-5। पोशाक और सजावट में सरलता ने हमेशा वास्तविक मसीह की इच्छा को चिन्हित किया है। आदर्श रूप में दूसरों को फैशन के बारे में हमारे द्वारा किए गए कथन से मसीहों के रूप में आकर्षित नहीं करना चाहिए, लेकिन यीशु द्वारा दिए गए हमारे जीवन के कथन से आकर्षित करना चाहिए। हम जिस तरह से कार्य करते हैं, हम मसीह को साझा करते हैं। इतिहासकार एडवर्ड गिवन हमें बताते हैं कि जब गैलेरियस ने फारसियों के शिविर को बर्खास्त कर दिया, तो मोती से भरे चमकदार चमड़े का थैला लुटेरे सैनिक के हाथों में गिर गया। इस आदमी ने सावधानी से उपयोगी बैग संरक्षित किया, लेकिन कीमती मोती को दूर फेंक दिया। जो लोग सतही रोमांचों से चिपके रहते हैं, वे दुनिया में दिखावा कर सकते हैं, जबकि यीशु को छोड़कर महान मूल्य का मोती को छोड़ लूटपाट में लगे उस सैनिक से भी बदतर रूप में हो जाते हैं। यह मात्र कोई भाग्य नहीं है जो हमारे हाथों से फिसल सकता है, बल्कि यह अनंत उद्धार है। इसलिए मसीही पवित्र शास्त्र हमें चेताता है, दुनिया को या दुनिया में किसी भी चीज से प्रेम मत करो। अगर कोई दुनिया से प्रेम करता है, तो परमपिता का प्रेम उसके अंदर नहीं है। दुनिया में सब कुछ के लिए पापी आदमी की भूख, उसकी आंखों की वासना, दुनिया के प्रति प्रेम और उसके पास जो कुछ है और उसके बारे में घमंड, वह परमपिता से नहीं बल्कि दुनिया से आता है। दुनिया और उसकी इच्छाएं दूर होती हैं, परंतु जो मनुष्य परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है, वह सदा रहता है। हम पढ़ते हैं 1 यूहन्ना 2:15-17 में, सैनिक सोने की तस्तरी सर्वविनाशक पापों और बुरी आदतों के लिए कड़ा श्रम करता है। मादक पेयों वाला विज्ञापन केवल युवा, सुंदर, कड़ी मेहनत, बेहद खुश लोगों को दिखता है। हम कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखते जो शराब की दुकान से बाहर निकलते वक्त दयनीय आकृति जैसा दिखे, जिसके हाथों में एक कागज की बोरी होती हो। हमें उन संगठनों से सावधान रहना होगा जो हमारे मसीह सिद्धांतों से समझौता करते हैं। 2 कुरिन्थियों 6:14। हमें इस बात से अवगत होना चाहिए कि हम अपने दिमाग में क्या भरते हैं। मैंने अपनी आंखों के सामने कोई बुराई नहीं आने दूंगा, यह भजन कारक का प्रतिज्ञा था जिसे उसने लिखा भजन संहिता 101:3 में। मुझे अपने दाहिने हाथ पर अनंत सुख के साथ अपनी उपस्थिति में आप आनंद से मुझे भर देंगे, भजन संहिता 16:11 में यह प्रतिज्ञा हम पाते हैं। यदि हम परमेश्वर को अपने दाहिने हाथ रखते हैं, तो हम लोग सुरक्षित और आनंदित रहेंगे। हम जिस तरह से देते हैं, हम मसीह को उसी तरह साझा करते हैं। हम पढ़ते हैं 6:19-21 में, पृथ्वी पर अपने लिए खजाना खड़ा ना कर, जहां पतंगे और जंग से नष्ट हो जाते हैं और जहां चोर ताला तोड़ते और चोरी करते, लेकिन स्वर्ग में अपने आप के लिए भंडार खड़ा करो, जहां आपका धन है वहां आपका मन भी होगा। हम पढ़ते हैं 3:8-10 में, क्या व्यक्ति परमेश्वर को लूटेगा? फिर भी तुमने मुझे लूट लिया। लेकिन आप पूछते हैं, हम आपको कैसे लूटते हैं? दशमांश कर और दान में पूरे दशमांश को भंडार में लाओ कि मेरे घर में भोजन वस्तु रहे। सर्वशक्तिमान ईश्वर कहता है, इसमें मेरा परीक्षण करो और देखो कि क्या मैं स्वर्ग के दरवाजों को नहीं खोलूंगा और इतना आशीष दूंगा कि आपके पास रखने की पर्याप्त जगह नहीं होगी। दशमांश हमारी वृद्धि का दसवां अंश है, जैसा कि बतलाया गया है व्यवस्था विवरण 14:22 में। और हम लुका 6:38 में पढ़ते हैं, दो और यह आपको दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। और परमेश्वर ने यही किया था। व्यक्ति का पश्चाताप वास्तविक था, वह अपने शुद्धिकरण में सभी तरह से लग गया और वह अपने मसीह जीवन में खुश था और परमेश्वर ने उसके लिए उसकी मृत्यु का दिन प्रदान किया। परमेश्वर वादा नहीं करते हैं कि सभी वफादार विश्वासी स्मृत हो जाएंगे, लेकिन हमें भरोसा है कि हमारे निर्माता जीवन की जरूरतों को पूरा करेंगे। मसीह ने हमारे लिए सब कुछ दिया, आइए हम अपना दिल पूरी तरह से उसे समर्पित कर दें। आइए मसीह को दूसरों के साथ प्रचार करें। जिस तरह से हम रहते हैं, वे सोचते हैं, देखते हैं, कार्य करते हैं, वैसे हम उसे साझा करते हैं। मसीह को दूसरों के साथ साझा करने और उसकी अद्भुत कृपा में बढ़ने की खुशी हमें बहुतायत से मिलेगी। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे इस वचनों के लिए। हम सबों को इस वचनों के द्वारा आशीष दे और हमें तेरा राह में चलने के लिए मदद कर। हम सबों को तेरे राज के लिए तैयार कर पिता। मेरे विश्वास मेरे श्रोताओं के संग विशेष रूप से हो पिता, और उन्हें इन वचनों के द्वारा विशेष आशीष दे। हम सबों को तेरे लिए जीने के लिए मदद कर।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।